ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संघीय संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन इसी चैत 19 के लिए किया आह्वान। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक के बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया कारण दिखाओ आदेश। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने क्षेत्रगत समस्याओं और काम किए जा सकने की संभावनाओं के बारे में कोशी और कर्णाली प्रदेशों के सांसदों से किया विचार विमर्श। मुगलिन नागढ़ा सड़क स्तरोन्नति के लिए कल से 3 दिनों तक रात के समय रहेगी बंद। और जल्द समझौतों पर नहीं आया तो ईरान के ऊर्जा केंद्रों और तेल के कुओं को ध्वस्त कर दिया जाएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने इसी चैत 19 के गुरुवार को दोपहर 2 बजे संघीय संसद का अधिवेशन बुलाने के लिए राष्ट्रपति के समक्ष सिफारिश करने का निर्णय किया। सरकार ने संविधान संशोधन पर बहस पत्र तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठन करने का निर्णय लिया है। आज सिंह दरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने संविधान संशोधन बहस पत्र तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार असीम शाह की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व सहित एक कार्यदल गठन करने का निर्णय लिया है। ये जानकारी सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री सस्मित पोखरियाल ने दी। मंत्री पोखरियाल ने बताया कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के वाचा पत्र के अनुरूप राष्ट्रीय सहमति के आधार पर संविधान संशोधन के लिए बहस पत्र तैयार किया जाएगा। इसी तरह पत्रकारों के प्रश्नों के जवाब में प्रवक्ता पोखरियाल ने कहा कि भाद्र 23 और 24 कते की घटनाओं से संबंधित प्रतिवेदन का क्रियान्वयन कानून सम्मत है। मंत्री पोखरियाल ने बताया कि भाद्र 24 की घटना में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 23 कते की घटना में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। अब आकर सरकार ने आयोग की रिपोर्ट को लागू किया है। मंत्री पोखरियाल ने यह भी बताया कि 24 कते की घटना की जांच के लिए अलग से समिति बनाने के विषय में कानूनी परामर्श किया जा रहा है। इसी तरह सरकार द्वारा ब्रिज कोर्स से संबंधित जारी सूचना के बारे में मंत्री पोखरियाल ने स्पष्ट किया कि फिलहाल एसईई देने वाले विद्यार्थियों को लक्षित कर कक्षा 11 में प्रवेश के नाम पर चलाए जाने वाले कोर्सों को रोकने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संघीय संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन इसी चैत 19 गते के लिए आह्वान किया है। राष्ट्रपति पौडेल ने इसी चैत 19 गते गुरुवार दोपहर 2 बजे के लिए संघीय संसद का अधिवेशन आह्वान किया है। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता रितेश कुमार शाक्य द्वारा जारी विज्ञप्ति के जरिए साझा की गई है। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने संघीय सांसदों के साथ चरणबद्ध छलपल विचार विमर्श शुरू किया है। उन्होंने आज सिंह दरबार में कोशी और कर्णाली प्रदेश से प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों के साथ विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री शाह ने संबंधित क्षेत्रों की समस्याओं, मुद्दों तथा संभावित समाधान के बारे में सांसदों के साथ चर्चा की। ये जानकारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद अशोक कुमार चौधरी ने दी। सांसद चौधरी के अनुसार प्रत्येक सांसद ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक को रिहा करने की मांग वाले 2 अलग अलग बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनों पर कारण दिखाओ आदेश जारी किया है। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी राधिका शाक्य द्वारा दायर रिट निवेदन पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मेघराज पौडेल के इजलास ने ये आदेश जारी किया, ये सर्वोच्च अदालत ने बताई। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने नेपाली कांग्रेस के नेता तथा पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक को कैद मुक्त करने की मांग करते हुए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन पर भी आधार और कारण सहित लिखित जवाब पेश करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश कुमार रेग्मी के इजलास ने आज कारण बताओ आदेश जारी करते हुए सूचना प्राप्त होने की तिथि से 3 दिनों के भीतर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय के माध्यम से लिखित जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। पूर्व गृहमंत्री लेखक की पत्नी यशोदा ने अपने पति को गैरकानूनी रूप से हिरासत में रखे जाने का उल्लेख करते हुए सर्वोच्च अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन दायर किया था। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजी।
नमस्ते। आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजी।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहा नै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। मुगलिन नागढुंगा सड़क कल से 3 दिनों तक रात के समय बंद रहेगी। चितवन की इच्छा कामना गांवपालिका 4 घोपटे भीर सहित अन्य स्थानों पर सड़क स्तरोन्नति के लिए कल चैत 17 से लेकर चैत 19 तक हर रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक सड़क बंद रखने का निर्णय किया गया है। ये जानकारी इलाका प्रहरी कार्यालय मुगलिन ने दी। बार बार यातायात बंद करने से यात्रियों को हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए सड़क परियोजना ने अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी वाहनों को रोकने का निर्णय किया है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉ विक्रम तिमिल सिन्हा ने कहा कि हुलाक सेवा को सुदृढ़ करना जरूरी है। आज बबर महल स्थित हुलाक सेवा विभाग के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक महत्व के 3 नए हुलाक टिकटों का विमोचन करते हुए उन्होंने डाक सेवा के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया। कार्यक्रम में विभाग के स्वीकृत फिलाटेलिक कार्यक्रम के अंतर्गत जावा दाम मुद्रा, धुरकुट दरबार गुलमी और नरसिंह अवतार नृत्य कार्तिक नाच के चित्रों वाले डाक टिकट जारी किए गए। मंत्री डॉ तिमिल सिन्हा ने कहा कि देश के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संपदा तथा संस्कृति के संरक्षण में डाक टिकट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और राष्ट्रीय पहचान को सुरक्षित रखने में भी सहायक होते हैं। उन्होंने सरकार के 100 बिंदु मार्गदर्शक के अनुसार नए तरीके से काम की गति बढ़ाने के लिए विभाग को कार्ययोजना प्रस्तुत करने का निर्देश भी किया। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल से आज प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत ने मुलाकात की। शीतल निवास स्थित राष्ट्रपति भवन में अपने कार्यकाल के समाप्त होने के करीब पहुंचने के अवसर पर प्रधान न्यायाधीश राउत ने राष्ट्रपति पोडेल से भेंट की। प्रधान न्यायाधीश राउत का कार्यकाल इसी चैत 18 को समाप्त हो रहा है। खुली सीमा वाले बांके के नेपालगंज सहित अन्य स्थानों पर बर्ड फ्लू का जोखिम दिखने के बाद उच्च सतर्कता अपनाई गई है। जिले से जुड़े सीमा नाकों से भारत से अवैध रूप से लाए जा रहे चूजों को लगभग रोजाना नष्ट किया जा रहा है। ये जानकारी पशु क्वारंटीन कार्यालय बांके के प्रमुख डॉ हरेराम यादव ने दी। सरकार ने भारत से मुर्गी के चूजे और सफेद अंडों को नेपाल लाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। डॉ यादव ने बताया कि आंतरिक ढुवानी में कड़ाई और निगरानी बढ़ाई गई है और मुर्गियों के आयात निर्यात पर भी सख्ती की गई है। बंदरों से पीड़ित किसानों ने आज कृषि औजारों के साथ खोटांग के जिला मुख्यालय दिक्तेल बाजार में विरोध प्रदर्शन किया। बंदर नियंत्रण का भरोसेमंद उपाय खोजने की मांग करते हुए किसानों ने हल, जुआ, कुदाल आदि के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद किसानों ने प्रमुख जिलाधिकारी रेखा कंडेल को ज्ञापन पत्र सौंपते हुए खेतों में उत्पात मचाने वाले बंदरों को तार जाली के पिंजरे में बंद करने और उनके लिए परिवार नियोजन की व्यवस्था करने की भी मांग की। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान से बातचीत के दावे के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को उसके तेल और पावर प्लांट पर हमले की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान हॉर्मुज को तुरंत खोल दे, वरना अमेरिका उसके बिजली उत्पाद संयंत्रों, तेल के कुओं और खर्ग द्वीप को उड़ाकर पूरी तरह से तबाह कर देगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर लिखा, अमेरिका ईरान में अपने सैन्य ऑपरेशन खत्म करने के लिए एक नए और ज्यादा समझदार शासन के साथ गंभीर बातचीत कर रहा है। इसमें काफी प्रगति हुई है, लेकिन अगर किसी भी कारण से जल्द ही कोई समझौता नहीं हो पाता है और अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य को तुरंत व्यापार के लिए नहीं खोला जाता है, तो उनके सभी बिजली उत्पादन संयंत्रों, तेल के कुओं और खर्ग द्वीप को उड़ाकर पूरी तरह से तबाह करके रख देंगे। ट्रंप ने आगे लिखा, ये हमारे उन कई सैनिकों और अन्य लोगों का बदला होगा जिन्हें ईरान ने पुराने शासन के 47 साल के आतंक के राज के दौरान बेरहमी से मारा और कत्ल किया है। उधर ईरान ने अमेरिकी और इसराइली अधिकारियों के घरों को निशाना बनाने की धमकी दी है। ईरान के संयुक्त सैन्य कमान के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा कि अमेरिकी और इसराइली अधिकारियों के आवासों को अब वैध निशाना माना जा सकता है। बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ये युद्ध अपने 31वें दिन में प्रवेश कर गया है, लेकिन दोनों पक्षों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने कहा है कि वो परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन वो परमाणु अप्रसार संधि का हिस्सा बनने के फैसले पर विचार कर रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा कि ईरान का इस्लामिक गणराज्य न कभी परमाणु हथियार हासिल करना चाहता है और न ही उसने कभी ऐसी कोशिश की है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने संघीय संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन इसी चैत 19 के लिए किया आह्वान। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक के बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया कारण दिखाओ आदेश। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने क्षेत्रगत समस्याओं और काम किए जा सकने की संभावनाओं के बारे में कोशी और कर्णाली प्रदेशों के सांसदों से किया विचार विमर्श। मुगलिन नागढ़ा सड़क स्तरोन्नति के लिए कल से 3 दिनों तक रात के समय रहेगी बंद और अगर जल्द समझौते पर नहीं आया तो ईरान के ऊर्जा केंद्रों और तेल के कुओं को ध्वस्त कर दिया जाएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।